से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। हम सभी सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। आज बाबा ने इस सतगुरु की दरबार को एक सुंदर टाइटल दिया है। हम सब कहाँ बैठे हैं? रूहानी ईश्वरीय गवर्नमेंट में हमारी है ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस गवर्नमेंट में तो कई प्लान्स बनाते हैं ना, और लोकसभा राज्यसभा होता है, तो ये भी तो लोकसभा राज्यसभा है, होवनहार देवताओं की सभा है। कई बार जब हमारी एनुअल मीटिंग होती है, हर साल होती है अप्रैल महीने में, तो उस समय इतना सुंदर वातावरण लगता है। सारी मुख्य मुख्य टीचर्स, मुख्य मुख्य भाई सब होते हैं जो प्लानिंग करते हैं भविष्य एक साल के लिए। तो बाबा तो कई बार वहाँ बताते रहे कि ये हमारी अलौकिक रूहानी लोकसभा राज्यसभा है। प्लान्स बनते हैं देश की सेवा कैसे आगे बढ़े, वो उसके प्लान्स बनते हैं। बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट के लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस गवर्नमेंट में हम सब क्या कर रहे हैं? हाँ, वैसे कोई और उस रूप से तो गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी बाबा इसको क्यों कहते हैं रूहानी गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट? क्योंकि तुम नई दुनिया की प्लानिंग करते हो, नई दुनिया के होवनहार विश्व महाराजन महारानी बनते हो अभी। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? कैसे बनेंगे विश्व महाराजन महारानी? उसके लिए मुख्य आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं पवित्रता। बाबा कहते हैं पवित्रता। पवित्रता के बल से ही तुम नए विश्व की स्थापना करते हो, सतयुग लाते हो इस धरती पर। तो जबकि तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, उस नई दुनिया के लिए है, तो फिर इस दुनिया से तो दिल नहीं लगानी है ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को वैराग्य भी देते हैं, दिलाते हैं। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? कुछ है क्या प्रॉब्लम? बाबा हम बच्चों को नई दुनिया के लिए भी प्लान्स बताते हैं, और साथ साथ कैसे वहां राज्य करेंगे, सब प्रकार के लोग होंगे, और उसके लिए बेहद का वैराग्य इस कलयुगी दुनिया के लिए चाहिए। ठीक सुनाई दे रहा है पीछे वालों? हाँ, पीछे वालों को नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं, पीछे वाले ना कर रहे पता नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो आज बाबा ने बताया है। बहुत सुंदर बातें हैं कैसे इस कलयुगी दुनिया के लिए वैराग्य आए। हर मुरली में बाबा सुनाते तो रहते ही हैं, लेकिन क्यों वैराग्य चाहिए इस दुनिया के लिए? क्योंकि ये दुनिया अब गई की गई। अब जो चीज नष्ट होनी होती है, खत्म होनी होती है, उसके लिए उसमें थोड़ी कोई मोह रखा जाता है। तो इसलिए बाबा वैराग्य दिलाते हैं। तो वैराग्य भी दिलाया है, और नई दुनिया के लिए क्या तैयारी करनी है वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/11/2024 है। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो। जाती है ना आंखें, जाती है, आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। आग लगनी है इसीलिए ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती है? ये गवर्नमेंट हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, पर गुप्त है, दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि सारी नई दुनिया बन रही है इस गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, उसके साथ कोई हमारा संबंध नहीं है कलयुगी दुनिया की गवर्नमेंट से, परंतु यहाँ कोई राज्य नहीं करना है, ये भविष्य सतयुगी दुनिया के राज्य की बात है। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। वहां वो गवर्नमेंट देखती है ना कैसे गरीबी हटाएं, हाँ ये सुविधाएं दे, ये करें वो करें। तो ये ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य नहीं समझ सकते ये क्या गुप्त कर्तव्य यहाँ चलता है, इसलिए पूछते रहते आप लोग क्या करते हो, क्या सुनाते हो, क्या करते हो, और यही पूछते रहते हैं। जब मनुष्य देवता बने तब तो नर्कवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। इस गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है? सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की तुम सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। इसलिए दादी जानकी जी भी नशे से कहते थे ना ओम शांति तीन बार कहकर, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो स्वयं की याद, बाबा की याद और कर्तव्य की याद। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तीन बार ओम शांति कहते हैं ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, शांति धाम का वासी हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। हम खुद तो जानते ही नहीं थे हम शांत स्वरूप आत्माएं, तो बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र सुख शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता आ गई तो सुख और शांति तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया को जहाँ 5 विकार है विकारी दुनिया। कितने नाम देते हैं इस विकारी दुनिया को भी, और निर्विकारी दुनिया को भी कितने सुंदर नाम देते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से फिर सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आते हो, वो है पवित्र दुनिया और ये है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए जाते हैं, अपने अपने समय पर दिन आता है फिर अपने अपने समय पर रात आती है, तो ये दोनों का गायन है दिन और रात का। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन है सुख और रात है दुख। रात भटकने की होती है, अगर कोई रात को निकल पड़े रोशनी वोशनी कुछ है ही नहीं पता नहीं कहाँ चला जाएगा तो भटकता ही रहेगा ना, इसलिए कई कहते हैं ना भाई रात को ट्रैवलिंग मत करो दिन में करो। दादी जी भी मना करती थी, बाबा अव्यक्त बाप दादा ने भी मना किया था रात की ट्रैवलिंग नहीं करो, पर दिन में जहाँ भी जाना है जाओ। तो बाबा कहते हैं तो दिन है सुख रात है दुख, रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना होता नहीं है, सोते हैं तो भटकना थोड़ी होता है तो वो तो सो जाते हैं, लेकिन कैसे रात में भटकना है इस बेहद रूप में, जब भक्ति करते तो भक्ति को भटकना कहा जाता है, ढूंढते रहते हैं भगवान को तो वहां भी ढूंढते रहते हैं तो भटकना कहा जाता है भक्ति को। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए, तुम्हारी आत्मा में पांच विकारों के कारण पाप थे। आत्मा में पाप थे किस किस के आधार पर, पांच विकारों के कारण, क्योंकि पांच विकारों से जो भी कर्म होगा वो पाप के खाते में जाएगा। कई पूछते हैं ना हमको कैसे पता चले मैं पाप कर रहा हूँ या नहीं, तो अगर कोई भी विकार के वश कर्म है वो पाप के खाते में जरूर जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा में पांच विकारों के कारण पाप थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हरेक जानते हैं हम पतित हैं। कैसे समझते हैं हम पतित हैं, कैसे समझते हैं पतित, पावन को बुलाते रहते हैं तो पतित हैं और कहते भी हैं आरती में, तो हम पतित हैं ये हरेक जानते हैं। भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन से बिगड़ पड़ी है। कौन सी क्वालिफिकेशंस, जो दैवी गुण थे हमारे वो सब दैवी गुण नष्ट हो गए ये क्वालिफिकेशंस से, एक काम विकार के कारण। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए, नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए खुशी को ढूंढते रहते हैं, खुशी कहाँ से मिलेगी वो बाहर ही खुशी ढूंढते हैं, कुछ भी समझते नहीं क्योंकि पतित बनते हैं। इस काम पर ही कितने हंगामे भी होते हैं, बाबा के बच्चों को कितने बंधन पड़ते हैं इस काम विकार के कारण, कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, हाहाकार कितना दुख अशांति मारा मारी लड़ाई झगड़े रोना पीटना। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में हाहाकार क्यों है, क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। अब ऐसी पाप आत्माओं की दुनिया में को थोड़ी देखना है या मोह रखना है, सब पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा तुम समझते हो कि हम तो क्या बन गए थे इस विकारी दुनिया में, बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट अ पेनी, पाई का भी महत्व नहीं था, मूल्य नहीं आज के मनुष्य का। काम की जो चीज नहीं उसे तो आग में जलाया जाता है, तो मनुष्य भी कोई काम के नहीं, तभी तो बाबा कहते हैं हाँ ये विनाश होना है। तो बाबा कहे कि काम की जो चीज नहीं होती उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज है ही नहीं, इसलिए जलने वाली है। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो इन सब को आग लग जाएगी, सबको आग लग जाएगी। हाँ मधुबन बचेगा क्या? हाँ सबको आग लग जाएगी। तो सबको आग लग जाएगी, बाकी किसको आग नहीं लगती है? किसको आग नहीं लगती है? आत्मा को आग नहीं लगती है। तो न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है आत्मा को, और न ही कुछ भी कोई तलवार या कोई काट सकता है। तो आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो जैसे बाबा ने शब्द दिया इंश्योर्ड, इंश्योरेंस करते हैं ना, इंश्योर करते हैं तो उनको निश्चय है कि हमको इंश्योरेंस से मिलेगा, लेकिन वो तो मरने के बाद मिलता है, परिवार को मिलता है। यहाँ तो आत्मा है इंश्योर्ड, मरती नहीं है, सदा ही उसको अंदर आत्मा मरती नहीं है, तो इसीलिए कोई उनको डर भी नहीं है। वहां तो डर लगता है ना मर न जाए, तो इंश्योर कराते हैं। तो बाबा कहते हैं इंश्योर तो शरीर का कराते हैं, आत्मा का इंश्योर थोड़ी होता है। तो बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में पांच तत्वों से भी ऊपर रहती है, जहां पांच तत्व ही नहीं है वहां आत्मा का वास है। पांच तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है, पांच तत्व ही तो सब कुछ संसार में जो कुछ है सब पांच तत्वों से ही बना हुआ है। तो पांच तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है ना इन पांच तत्वों से, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। पांच विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं तो गंदी बन पड़ती है, तो बाप किस लिए आए हैं? तो बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर बिगड़ता है, सारा चरित्र सबका बिगड़ गया है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं, सारे गुण खत्म हो गए हैं ना बाबा, न लायक कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। तो कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य और कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कर रही है इस ईश्वरीय गवर्नमेंट? ईश्वरीय गवर्नमेंट इस समय आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है, आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवताएं कहां से आए? ये दिखाते देवताएं थे सृष्टि पर, नहीं तो कहां से आए? अभी तो कोई देवताएं है ही नहीं, ये कोई नहीं जानते कि देवताएं कहां से आए। इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है, गुप्त रूप में देवताएं तैयार हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना कैसे हम गुप्त रूप से देवता बन रहे हैं? तो बाबा कहते हैं इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। है तो ये भी मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य है, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवताएं तो होते ही है स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, है ना? खेल ही है, नरकवासी से स्वर्गवासी, स्वर्गवासी से फिर नरकवासी। तो खेल ही है, फिर नर्कवासी सो स्वर्गवासी बनते हैं। ये तुम भी नहीं जानते थे, जानते थे क्या कि हम ही स्वर्गवासी थे फिर हम नर्कवासी बने? दुनिया में तो स्वर्गवासी शब्द कोई अच्छा नहीं मानते, आप फलाना स्वर्गवासी हुआ माना मर गया। तो इसीलिए कह के शुभ शुभ बोलो, है ना। एक आया था योग शिविर में, एक भाई आया था, उसको कहा तुम अनुभव सुनाओ। तो अनुभव क्या सुनाया कि मैंने घर में फोन किया, शिविर में आया था, नया नया था शिविर में, वो घर में फोन किया, मैं तो स्वर्गवासी बन गया हूँ, मैं तो स्वर्गवासी बन गया हूँ। अरे तो हमारे घर वाले रोने लगे ना, वो गुस्सा करने लगे, क्या स्वर्गवासी बन गए हो, तुम मर गए हो क्या जो स्वर्गवासी बन गए हो? तो फिर वो हमको बता, हमने कहा ऐसे मत बोलो, हम स्वर्ग में आ गए ऐसे भले कहो, पर मैं स्वर्गवासी बन गया हूँ स्वर्गवासी ऐसे थोड़ी कहना होता है, पर अभी तो सचमुच स्वर्गवासी बन रहे है ना। तो बाबा कहते हैं तो फिर स्वर्गवासी कैसे बनते, मरने के बाद ही बनते, भगवान से कब मिलते, मरने के बाद ही। तो दोनों ही कर रहे हैं ना, भगवान से मिल रहे हैं तो मर गए ना पुरानी दुनिया से, स्वर्गवासी बन रहे हैं माना पुरानी दुनिया से मर गए। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो ये भी तुम समझते हो ये ड्रामा बना हुआ है, ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये किसका काम है? ये धंधा बाप ने तुमको सिखलाया है, वो हमें बना रहे हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता, फिर हमको ये धंधा बाबा सिखा रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी पतित से पावन मनुष्य से देवता बना सकें। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग की लायक बने। शरीर तो नहीं बनेगा ना पावन, वो तो पतित तत्वों का बना हुआ है तो ये तो खत्म होना है। तो आत्मा पावन बने तभी स्वर्ग की लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। हाँ, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। कौन सा हथियार हमारे पास है पवित्र बनने का? ये ज्ञान और योग, ये पवित्र बनने के हथियार है। तो पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, श्याम माना पतित और सुंदर माना पावन, तो इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है। परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं, श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, श्री कृष्ण की समझानी में हम बताते श्याम सुंदर, तो इसमें दो दुनियाएं आ जाती है, वो आत्मा श्याम भी बनती है तो सुंदर भी बनती है। तो बाबा कहते हैं इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है, ऐसे नहीं श्याम है तो दुनिया दूसरी है, सुंदर है तो दुनिया दूसरी है, दुनिया तो ये एक ही है। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, पर वही दुनिया नई बनती है, फिर वही दुनिया पुरानी बनती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, है ना। मनुष्य भी देखो, पहले तो कितना छोटा बच्चा है, अभी 20 साल के बाद देखो तो कितना बड़ा हो जाएगा, फिर और 20 साल के बाद देखो तो बूढ़ा हो जाएगा। तो पता चलता है ना भाई बढ़ रहे हैं, तो दुनिया भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, तो दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी समझा है ना, कौन लक्ष्मी नारायण ने भी पूर्व जन्म में समझा है ये ज्ञान। तो बाबा कहते इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बन गए हैं लक्ष्मी नारायण, कितने मीठे बन गए हैं, सारा समझा इस समय तभी इतने मीठे बन गए। अब किसने समझाया उनको? भगवान ने समझाया, लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, ऐसे नहीं लड़ाई करके देवता बने, तो लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है कौन है ये कोई नहीं जानते, है ना। शिव के मंदिर में जाएंगे, क्या नहीं पूजा करते हैं, बहुत कुछ पूजा करते हैं। हमने एक बहुत बड़ी पूजा देखी थी शिव की, हम गए थे कहाँ, चिदंबरम, ये तमिलनाडु में शहर है चिदंबरम, वहाँ नटराज का मंदिर है, नटराज का, और रात को 12 बजे वो आरती होती है शिव की। कैसे आरती होती है, आप वो पहले शिव को, शिवलिंग को, स्फटिक का शिवलिंग, वो पर्दे के पीछे, फिर धीरे धीरे उस पर्दे के पीछे से आगे ले आते हैं, और ले आ करके उसकी पूजा करते हैं, और पूजा में 14 या पता नहीं 16 चीजों की का वो अभिषेक करते हैं, पहले पानी से, फिर दूध से, फिर कितना भभू, फिर लास्ट में जो अभिषेक होता है वो भभूति से अभिषेक होता है, भभूति देखा है किसने, चिदंबरम तमिलनाडु के बैठे हैं यहाँ, बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम लोग रात को 12 बजे गए थे वो देखने के लिए, और फिर वो लास्ट में वो भभूति से उनका अभिषेक करके, फिर उसको फिर साफ करके, फिर धीरे धीरे करके वापस पर्दे के पीछे ले जाते, हो गया। तो ये शिव का अभिषेक होता है। तो देखो बाबा कहते हैं शहद का भी अभिषेक होता है, शहद भी डालते हैं, बहुत कुछ चीजें। तो बाबा कहते हैं तो शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है कौन है ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे हमको क्या समझाएंगे, उनको अगर समझाओ भी ना तो कहेंगे हमको क्या आप समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तो तुम बच्चों में नंबर वार है जो ये धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है, दुनिया में तो पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो हम पारस बुद्धि बन रहे हैं, तो क्या है काम हमारा, कि औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगले हुए ना, पारस बुद्धि बनने वाले हंस, और पत्थर बुद्धि जो है वो बाबा कहते बगुले। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती, बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहुत विकारी आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ, पवित्र रहते नहीं है पर बताते हम पवित्र रहते हैं, तो है सब झूठ। इसीलिए कहा जाता है झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है, जो झूठ बोलते झूठा काम करते बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं, थर्ड ग्रेड, वो थर्ड ग्रेड है, झूठ बोलते झूठा काम करते वो थर्ड ग्रेड बनते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होता है ना, उस दिन भी देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा के बच्चे बनते हैं, चलो उनकी जो ऐसी कोई बिजनेस है, हाँ कई तो शराब की बिजनेस करते हैं, बहुत कमाते हैं शराब की बिजनेस में, तो बाबा उनको कहते ये बिजनेस बंद करो, अच्छी बिजनेस करो जिसमें सबको सुख मिले। शराब की बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, अब जिसने शराब पिया वो गुस्सा करके घर में पत्नी को मारेगा, और फिर उसका पाप तो उस पर भी चढ़ेगा ना जिसने शराब बेची, क्योंकि सब पर पाप चढ़ता है। कोई कहते ना मीट हमने तो केवल खाया, हमने कोई जानवर को मारा थोड़ी, पकाया थोड़ी, हमने तो खाया, तो हमारे पर पाप क्यों चढ़ेगा, लेकिन सब पर पाप चढ़ेगा। जानवर को पकड़ने वाला, फिर मारने वाला, फिर बेचने वाला, फिर खरीदने वाला, फिर पकाने वाला, फिर खाने वाला, सब पर पाप चढ़ता है। तो बाबा ने कहा ऐसी बिजनेस मत करो जिससे पाप बने। तो बाबा अभी क्या कहते हैं ये, तो बाबा कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है, आत्मा भी थर्ड ग्रेड है, तो क्या जाकर बनेगा। तो बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है, ऐसे नहीं आप पवित्र बनकर फिर सभा में आकर के बैठे और कहे नहीं मैं तो पवित्र हूँ, तो वो थर्ड ग्रेड हो गया। तो बाबा कहते हैं सबूत देना है पवित्रता का, सबूत देना भी कैसे सबूत देंगे। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो ये तो असंभव है, सन्यासी तो ऐसे ही कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते और पवित्र रहते हो ये तो असंभव है, लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। यहाँ हुआ था दादी जी ने ये प्रोग्राम रखा था, जब संत सम्मेलन हुआ था तो कई संत आए थे, और उस समय जो बाल ब्रह्मचारी युगल थे, बहुत है बाल ब्रह्मचारी युगल, तो उनको भी बुलाया था, तो वो आए थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि हम कैसे साथ में रहते और पवित्र रहते हैं, लेकिन सन्यासियों ने माना नहीं। हम तो आश्चर्यचकित हो गए ये सब देख करके, बिल्कुल नहीं माना, ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है कि साथ में रहे और पवित्र रहे। लेकिन हम बच्चे ये पान का बीड़ा उठाते हैं ना, साथ में रहेंगे और ज्ञान तलवार बीच में। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हम कैसे इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, किस कारण से, क्योंकि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किस आधार पर वो शक्ति आती है हमें, हमें भगवान पढ़ाते हैं। वो कहते हैं, अब भगवान क्या कहते हैं, तुम पवित्र बनने से 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अगर पवित्र बने तो इतनी बड़ी लॉटरी मिल रही है, क्यों छोड़ेंगे ये लॉटरी, तो जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, और ही खुशी होती है। खुशी होती है ना कि हम पवित्र बनेंगे, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे, और तो कोई बना नहीं सकता। ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है ना, सबका अंदर ये संकल्प पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार कर घर जाना है, शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है। 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। तो पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है, अलफ आत्मा वे बादशाही, बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं है, बाबा अलफ ये भूलना नहीं है। तो पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है, ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, कोई नई बात नहीं है जो नई दुनिया स्थापन करे, अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नर्क का विनाश हो जाता है, नर्क कितना बड़ा है, कितना बड़ा है नर्क, और स्वर्ग कितना छोटा है, वो हद की दुनिया, ये बेहद की दुनिया। तो स्वर्ग कितना छोटा है, नई दुनिया में है एक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं, लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। अब ये धर्म किसने स्थापन किया? जो एक धर्म ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है, लेकिन रचयिता तो शिव बाबा है ना, ये धर्म किसने स्थापन किया? हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा ने स्थापन किया, लेकिन ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने स्थापन किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित से पावन बनते हैं। शिव बाबा पतित से पावन नहीं बनता है, ब्रह्मा जरूर बनता है। पहले मनुष्य रूप में पतित है, फिर पवित्र पावन बनता है तो ब्रह्मा कहलाता है। फिर उनके द्वारा बाबा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित से पावन, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, उनको यानी शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही है, अब आत्माएं तो है ही है, फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्माओं को नया जीवन देते हैं, एकदम मुर्दे मिसल बन गए हैं तो उनको नया जीवन देते हैं, प्राण दान देते हैं, तो फिर से आज ऐसे जीवित हो जाते हैं, सत्युग के देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो अनादि क्रिएटर कहा जाता है, आत्माएं तो है ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का क्रिएटर नहीं है, इसीलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, और ये तीसरी चीज कौन सी अनादि? ये खेल भी अनादि, पुरुष परम पुरुष प्रकृति, ये तीनों ही अनादि। तो बाबा कहते हैं खेल भी अनादि है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिला है। ये किसने दिया ज्ञान? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो और फिर रावण के राज्य में क्या बन जाते हो? निधन के बन जाते हो, धनी धोड़ी है ही नहीं, मालिक को समझते ही नहीं है, इसलिए पाप करते रहते हैं। हाँ, जिनको ये पता होता है कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे बताना है मेरे ऊपर वाले को, उसको इसीलिए उसको कहते हैं कि वो कितना जिम्मेदार होता है। अभी तो कोई जिम्मेदार कोई है नहीं जिसको वो उनको बताए, इसलिए पाप करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं निधन के बन गए हैं, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हैं, फिर कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं, विकार है ना, मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनको कौन अभी स्वर्ग स्थापन हो रहा, कहता यही स्वर्ग है, तो नरक स्वर्ग सब इकट्ठा ही है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कैसे क्या क्या लिख दिया है, परंतु बाबा कहते तुम सब पांडव गुप्त हो। कितना सूत मूंझा हुआ है, बाप को ही बुलाते हैं कि हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? सबके कैरेक्टर सुधर गए ना, क्या थे पहले? बहुत होंगे जो पहले शराब भी पीते थे, मीट भी खाते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, अब बाबा के बने हैं तो बिल्कुल सुधर गए। तो बाबा कहते हैं कई तो तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। बाबा को छोड़ा तो और ही जो कैरेक्टर पहले बिगड़ा हुआ तो और ही ज्यादा बिगड़ जाता है, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं, देरी नहीं लगती है? हंस बनने में भी देरी लगती है क्या, बगुला बनने में भी देरी लगती है क्या? दोनों ही सहज बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। उस व्यक्ति का कैरेक्टर बाहर जब वो जाता है तब दिखाई पड़ता है। तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती पशंती औरों को सुनावंती, फिर धीरे धीरे माया उनको हप कर लेती है तो भागंती हो जाते हैं। इतना जोर से गिरते हैं जो हड गुड ही टूट जाते। हड गुड, हड माना हड्डियां, गुड माना ये जो जॉइंट्स है ना, तो वो भी वो गुड उसको सिंधी में है हड गुड, तो ये टूट जाते हैं। तो इतना जोर से गिरते हैं जो हड गुड ही टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है, यहाँ तो भी पता चल जाता है। इंद्र को तो बास आई कि कोई नर्क का मनुष्य बैठा है। तो बाबा कहते हैं इंद्र सभा की बात है ना, इंद्रप्रस्थ में मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसे को फिर सभा में नहीं ले आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है उनको जरूर भले लाओ बाबा की मुरली में। अब नया आएगा उसको क्या समझ में आएगी, क्या बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चों की अभी बुद्धि कितनी पलटती है, पलट गई है बुद्धि, तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर जा रही है बुद्धि, तो कितनी पलटती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है, इच्छा मात्रम अविद्या, माया इच्छाएं पैदा कराती है। परंतु बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, कोई इच्छा रखी तो गया, सुना हाँ बहने, कोई इच्छा रखी तो गया। वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। अब उतर गए दिल से तो फिर वापस थोड़ी, फिर बड़ा मुश्किल है वापस दिल पर चढ़ना, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, लौकिक में बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते हैं। कलयुगी बच्चे तो होंगे ना, ये बाप मरे तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिले, तो बाप को खत्म करने के लिए भी वो तैयारी करते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं, खाली बाप को नहीं सबको खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं, रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है, कितनी नफरत दिलाते हैं बाबा इस कलयुगी दुनिया से, बहुत नफरत आती है, कितनी डर्टी दुनिया है। हमने तो कई विदेशी भाई बहनों को देखा, हाँ इतना बदल जाते हैं बात मत पूछो, इतना बदल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में टीवी भी नहीं रखते। कहते टीवी क्यों रखेंगे, टीवी में तो क्या आता है, अखबार भी नहीं पढ़ते। तो एक बार मैं अखबार पढ़ रही थी तो एक विदेशी बहन आई मेरे पास, दीदी ये क्या पढ़ती हो, ये रावण समाचार ये रावण समाचार, ये रावण समाचार क्यों पढ़ रही हो, हम लोग तो कभी पढ़ते ही नहीं है। अब दुनिया में कितना क्या क्या होता रहता है, आराम बैठ के पढ़ते हैं तो वो भी तो गंध है ना सारा। बाबा ने हमें इतना सुंदर संसार दिया है, तो देखो विदेशी बहुत आगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई कम है वो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं, गांधी जी भी कहते थे हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अभी बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस जाना ही है, कोई को भी बाबा छोड़ेंगे नहीं, सबको वापस जाना ही है, तब ही सबको सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठे जावे, तब तो इकट्ठे जावे। पहले नीचे आएंगे फिर सब इकट्ठे वापस जाएंगे। बाप भी तो आए हैं ना, तो सब आत्माओं को भी धरती पर आना है जरूर, फिर एक साथ बाप सबको ले जाएंगे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए, बाप के आने बगैर कोई वापस जा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखी माया धोखा दे देगी, तो माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइस लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। कौन बन सकेंगे माया जीत विजयी? जो याद की छत्र छाया के नीचे और सदा होंगे और मर्यादा की लकीर के अंदर होंगे, वो माया जीत विजयी बनेंगे। तो बाप की याद ही छत्र छाया है, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, न वो छत्र छाया में आ सकेगा न वो लकीर के अंदर आ सकेगा। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। किस स्मृति से समर्थ रहो? कि विजय माला हमारा ही यादगार है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। आज का अव्यक्त इशारा, आज 14 तारीख है, कल बाबा मिलन का दिन है, आज 14 तारीख है। अपने को निमित्त समझकर चलो, अव्यक्त इशारा है, अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती है कभी ज्यादा तो बोझ न लगे। हाँ, ज्यादा सेवा है तो बोझ न लगे, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, क्या होगा कैसे होगा? हाँ, कम है कैसे होगा नहीं सोचो, नहीं क्या होगा कैसे होगा। कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निमित्त बन निर्माण बन, निमित्त बन निर्माण करने वाले, निमित्त बन निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं मान की इच्छा है तो बोझ है, मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता है, इसलिए सदा हल्के रह सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। डबल फॉरेनर्स, आई विल अनाउंस टुडेज प्रोग्राम। सो दिस मॉर्निंग